Good morning to everyone. Today I am going to discuss about the problem in the construction of index number. आज हम लोग बात करेंगे कीमत सूचकांक के निर्माण में आने वाली समस्याओं के बारे में. इससे पहले भी कीमत सूचकांक के बारे में उससे संबंधित समस्याओं को हल करने की कोशिश की गई हैं, वो गणितीय रूप में. लेकिन आज हम इस बात को करेंगे कि कीमत सूचकांक बनाने से पूर्व कुछ समस्याएं आते हैं. जैसे कि सूचकांक निर्माण करने से पूर्व हमें यह निश्चित करना होता है कि उसका उद्देश्य क्या है. किसी भी काम को करने से पहले हम उसका उद्देश्य तय करते हैं. उद्देश्यहीन काम का कोई लक्ष्य तय नहीं होता है, इसीलिए आवश्यक है कि कीमत सूचकांक पहले से निर्माण करने से पूर्व हम उसका उद्देश्य निश्चित करें. वी हैव टू डिसाइड पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर एट फर्स्ट. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कीमत सूचकांक बनाने जा रहे हैं तो ये तय करेंगे कि वह किस तरह का होगा, किस काम के लिए होगा. क्या हम कंज्यूमर प्राइस इंडा रहे हैं या क्या हम एग्रीकल्चर लेबर का इंडेक्स नंबर बनाने जा रहे हैं, क्या हम वैल्यू इंडेक्स नंबर बनाने जा रहे हैं, इस बात का हम ध्यान रखेंगे. साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कोई भी इंडेक्स नंबर ऑल पर्पस नहीं होता. देयर इज़ नो ऑल पर्पस इंडेक्स नंबर. सो इट शुड बी क्लियरली एंड केयरफुली डिसाइडेड बिफोर कंस्ट्रक्टिंग. हाँ, हमें इसे बनाने से पहले ध्यानपूर्वक सोचना होगा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर, व्हाई वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट इट एंड व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंडेक्स नंबर. इफ़ वी फेल टू डिसाइड इट्स पर्पस, डेफिनेटली इट वुड बी कंफ्यूजिंग एंड लीड टू वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी. अगर हम इसका पर्पस को, इनके उद्देश्य को तय करने में असफल हो जाते हैं तो ये समय की बर्बादी होगी और धन की बर्बादी समझा जाएगा. हमें इंडेक्स नंबर बनाने से पहले यह देखना अति आवश्यक होता है. यदि हम ये देखना चाहते हैं कि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होने से उपभोक्ता पर क्या प्रभाव होगा तो हमें इससे संबंधित रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर बनानी चाहिए. अगर हमें ये देखना है कि जैसे कि अभी का दौर चल रहा है 2020 पेंडेमिक पीरियड है, वैश्विक आपदा से गुजर रहा है, तो इस दौरान में अगर कीमत की क्या स्थिति है या कीमत परिवर्तन की क्या पोजीशन है, तो इसे नापने के लिए हमें इसके पूर्व के, जैसे कि 2020 का देखना है कि कीमत में परिवर्तन होने से उपभोक्ता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस पीरियड की तुलना करने के लिए हमें एक आधार वर्ष की ज़रूरत पड़ेगी. तो हम इसके जस्ट बिफोर वाले साल को आधार वर्ष के रूप में ले सकते हैं. ठीक है. और ये भी है कि अब दूसरा समस्या ये आता है कि आधार वर्ष क्या होता भाई. तो दूसरा इससे संबंधित समस्या ये है कि वी शुड सेलेक्ट द बेस ईयर. सेलेक्शन ऑफ बेस ईयर इज़ द नेक्स्ट प्रॉब्लम व्हाइल वी आर कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर. सूचकांक का उद्देश्य निश्चित करने के बाद दूसरा यह समस्या होता है कि आधार वर्ष किसे चुना जाए. आखिर ये आधार वर्ष होता क्या, व्हाट इज़ बेस ईयर. बेस ईयर इज़ दैट ईयर By which we compare to the current year prices. आधार वर्ष वह वर्ष होती है जिनके आधार पर हम वर्तमान वर्ष की कीमतों में आने वाली परिवर्तन को नापते हैं. अर्थात हम आधार वर्ष की कीमतों को 100, आधार वर्ष की कीमत सूचकांक को हम 100 मानकर चलते हैं. अर्थात उस वर्ष ना तो मूल्य स्तर असामान्य रूप से ऊंचा होता है और ना ही बहुत नीचे होता है. यह वर्ष चालू वर्ष से बहुत ज़्यादा दूर या बहुत ज़्यादा गैप में नहीं होना चाहिए. बहुत ज़्यादा लंबी इट मीन्स दैट द बेस ईयर शुड नॉट बी टू फार फ्रॉम द करेंट ईयर। सामान्यतः यह अवधि बेस ईयर जिसे भी हम चुनते हैं वह अवधि सामान्यतः एक वर्ष का हो सकता है। तो बिफोर डिसाइडिंग बेस ईयर विच इज़ यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर वी शुड कीप सर्टेन पॉइंट इन आवर माइंड दैट द बेस पीरियड शुड बी ए नॉर्मल ईयर। जब भी हम बेस ईयर चुनेंगे तो कुछ अपने दिमाग में बात को रखना है कि बेस ईयर जो है एक सामान्य वर्ष हो। इट मीन्स दैट कि इट शुड बी नॉट द प्राइस शुड बी नॉट टू हाई और नॉट टू लो। इस आधार वर्ष की कीमतें जो है उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हुआ हो। ना तो ये आधार वर्ष किसी युद्ध वाली वर्ष होनी चाहिए, ना तो ये ऐसा वर्ष होना चाहिए जब बाढ़ हो या सूखा हो या अर्थक्वेक आया हो या आर्थिक तेजी हो या मंदी हो, और ना जिस तरह के अभी की आपदा के दौर से भारत या पूरा विश्व गुजर रहा है। तो हम कभी भी वी शुड नॉट टेक 2020 एज ए बेस ईयर। हम लोग कभी भी 2020 को बेस ईयर के रूप में नहीं ले सकते हैं। और ये भी देखना है कि बेस ईयर जब लेते हैं तो कुछ फिक्स्ड बेस ईयर भी लेते हैं, कुछ चेन बेस ईयर भी हो सकता है। कुछ एक पर्टिकुलर बेस ईयर को मान के उसके आधार पे हम कंपैरिजन करते हैं रिलेटिव चेंजेस का, करंट ईयर में क्या हो रहा है वो। या तो जैसे दूसरी समस्या, इसके बाद वाली समस्या पदों के चुनाव से संबंधित है, सिलेक्शन ऑफ द आइटम से संबंधित है, सूचकांक में शामिल की जाने वाली वस्तुओं की सूची को रिजीम या बास्केट कहते हैं हम। जब किसी भी सूचकांक की रचना करते हैं तो उनमें जो भी पदों या वस्तुओं को शामिल करते हैं तो यह ज़रूर देखते हैं कि उस सूचकांक का उद्देश्य क्या है। प्रत्येक सूचकांक का उद्देश्य एक जैसा नहीं होता है, वो किसी विशेष वर्ग के लिए बनाए जाते हैं। सूचकांक को में सभी परिवर्तन शामिल नहीं होते हैं, बल्कि कुछ चुने हुए परिवर्तन शामिल होते हैं। सूचकांक में शामिल करते समय पदों के प्रति हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। हमें यह देखना होता है कि प्रतिनिधित्व वस्तुओं का चुनाव करना चाहिए। विश्वसनीय सूचकांक की रचना करने के लिए संबंधित पदों का पर्याप्त बढ़िया प्रतिदर्श अर्थात सैंपल लिया जाना चाहिए। जीवन निर्वाह निर्देशांक अर्थात सूचकांक की रचना में उन्हीं वस्तुओं को शामिल किया जाना चाहिए जो उस वर्ग की जिससे संबंधित हम सूचकांक बना रहे हों उससे संबंध रखते हों। जैसे कि जब हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो विशेष वर्ग को ध्यान में रखते हुए उनका फूडिंग हैबिट्स को हम उसमें डालते हैं। मैं उनकी मकान का किराया क्या है, वो बिजली पे कितना खर्च करते हैं या कपड़ा पे कितना खर्च करते हैं, परिवहन पे क्या खर्च करते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा आदि अनिवार्य पदार्थों पे कितना खर्च करते हैं, इन सभी मदों को सूचकांक निर्माण करते समय विशेष रूप से हम ध्यान देते हैं। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं, हमें यह पता है कि उपभोक्ता विभिन्न प्रकार के होते हैं। निम्न वर्गीय उपभोक्ता भी होते हैं, मध्य आय वाले उपभोक्ता होते हैं, उच्च वर्गीय उपभोक्ता होते हैं। तो उनके स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हीं मदों को उन्हीं वस्तुओं को सूचकांक में शामिल किया जाना चाहिए जिनसे संबंधित वह सूचकांक बनाया जा रहा हो। और इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा कि सूचकांक का उद्देश्य तुलना करना होता है। तुलना करके भी हम जान पाते हैं क्या उपभोक्ता को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है या कीमत में कितनी वृद्धि हुई है। इस बातों का हम चर्चा करते हैं या इस बातों का हम अवलोकन करते हैं। और वस्तुओं को शामिल करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वस्तुएं प्रमाणित गुण वाली होनी चाहिए। द कमोडिटी शुड बी स्टेबल इन क्वालिटी, गुणवत्ता वाली वस्तु होनी चाहिए। अतः प्रमापित गुण वाले विभिन्न वस्तुओं को ही सूचकांक में शामिल करना चाहिए। प्रमापित किस्म की वस्तुओं के मूल्य में ही से ही दो समयों के मध्य में हुए परिवर्तन की तुलना संभव हो सकती है। और यह भी देखना है कि अदृश्य वस्तुओं को शामिल ना किया जाए, क्योंकि वैसे वस्तुओं के मूल्य को मापने में कठिनाइयां आती है, तथा पदों की संख्या पर भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। पदों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जिसकी व्यवस्था करने में या उनकी शुद्धता की जांच करने में कठिनाई हो। चौथी समस्या यह होती है सूचकांक निर्माण करते समय कि प्राइस क्वोटेशन क्या है, कीमत का चुनाव कैसे करना चाहिए। सब विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का अलग अलग कीमत होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग दाम में बिकते हैं, प्राइस में डिफरेंसेस भी देखा जाता है, इसीलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए। सूचकांक की रचना के लिए प्राइस कोटेशन या तो नियमित रूप से प्रकाशित बाजार भाव में लिए जा सकते हैं, अथवा व्यापारी, उत्पादक, निर्यातक आदि से प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्हीं कीमतों को शामिल किया जाना चाहिए जिनके वस्तुओं को सूचकांक में शामिल किया जाता है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मूल्य किस रूप में व्यक्त किया जा रहा है, मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा रहा है, यह वस्तु परिमाण के में व्यक्त किया जा रहा है। अर्थात यह भी देखना चाहिए वस्तुओं के मूल्य थोक या फुटकर हो हैं या क्या, उन पे भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। बाजार का मूल्य की क्या व्यवस्था है, मूल्य की प्रामाणिकता क्या है, इस बातों पे भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए सूचकांक निर्माण करते समय। पांचवी समस्या यह आती है कि माध्य का चुनाव कैसे हो। फॉर्म्स ऑफ एवरेज टू बी यूज्ड, एवरेज का किस रूप को हम इस्तेमाल करें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेज सच एज अर्थमेटिक मीन, मोड, मीडियन, ज्योमेट्रिकल मीन इटीसी आर अवेलेबल हेयर। इस वजह से हमें चुनने में समस्या तो होती है। सूचकांक बनाते समय एक प्रमुख समस्या औसत निकालने की है, किस तरीके से औसत निकाला जाए, अर्थमेटिक मीन मेथड से आइदर ज्योमेट्रिकल एवरेज से। औसत निकालने की रीति में परिवर्तन करने से एक ही कीमत से अलग अलग सूचकांक प्राप्त होते हैं, अतः यह कार्य भी कठिन है। इस वजह से हमें माध्य का चुनाव करते समय विशेष ध्यान रखना होता है। इसके बाद छठी समस्या है भारांक की विधि का चुनाव करने से संबंधित। जिन वस्तुओं के संबंध में सूचकांक बनाया जाता है, यदि उनके महत्व में अंतर पाया जाता है तो उन्हें उनके महत्व के अनुसार भार देना पड़ता है। भार देने की कई विधियां होती हैं, जैसे फिशर की विधि, पाश्चे की विधि तथा लैसपेरी की विधि आदि। भारित सूचकांक बनाते समय भार देने की विधि का चुनाव करना पड़ता है। सूचकांक निर्माण करते समय एक और यह भी समस्या आती है कि सूत्र का चुनाव कैसे किया जाए, किस सूत्र का इस्तेमाल किया जाए, दैट इज सेलेक्शन ऑफ फॉर्मूला, विच फार्मूला वी शुड यूज, किस तरह का फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। सूचकांक की रचना के कई सूत्र हैं, जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, सिंपल एग्रीगेट मेथड, एग्रीगेटिव मेथड, वेटेड एग्रीगेट मेथड, प्राइस रिलेटिव मेथड, बहुत सारे फार्मूला हम लोग देखे हैं, पढ़े हैं। तो अब इनका इस्तेमाल कैसे होगा, किस तरह के आंकड़े हैं, कैसा सूचकांक बनाना, इस पर निर्भर। जैसा कि बहुत सारे सूत्र हैं, लेस्पेरे का, पाश्चे का, डार्विन का, फिशर इंडेक्स नंबर है, तो आइडियल तो है फिशर इंडेक्स नंबर। इन सब सूचकांकों को ध्यान में रखना होता है, यह निश्चित करना होता है कि कौन सा सूत्र इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट क्लास में आगे दूसरे विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे, दूसरे टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे।